Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Ras Bihari Radha Ras Bihari Radhe. Jaya Sita Ram Lakshman Hanuman Sita Ram Lakshman Hanuman. Jai Gauranitai, 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 Jai Gauranitai, Jai Gauranitai. Jai Jai Prabhupad, 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 Jai Jai Prabhupad, Jai Jai Prabhupad, Prabhupad. Nittai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nittai Gaura Hari Bol.
Jai Om Vishnupad Paramhamsa Parivrajak Acharya Ashtotar Satash Shri Srimad is Divine Grace Abhay Charanar Vind Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. ISKCON BBT Sanstapak Acharya Savior of the Whole World Srila Prabhupada Ki Jai. Jai Om Vishnupad Paramhamsa Parivrajak Acharya Ashtotar Satash Shri Srimad is Divine Grace Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai. Anant Koti Vaishnav Vrind Ki Jai. Bhagavat Vani Srimad Bhagavad Gita Ki Jai. Itai Gaur Premanande Hari Hari Bol. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. आज के इस संध्याकालीन भगवद गीता सत्र में आप सभी का स्वागत है. आज हम चर्चा करेंगे भगवद गीता के 13वें अध्याय से श्लोक संख्या 1 और 2. आप लोग मेरे पीछे दोहरा सकते हैं श्लोक. ये अध्याय का शीर्षक है, 13वें अध्याय का शीर्षक है प्रकृति पुरुष तथा चेतना. श्लोक संख्या 1. अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुम् इच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव. प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुम् इच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव. अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुम् इच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव. श्लोक संख्या 2. श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्र क्षेत्रम् इति अभिधीयते एतद्यो वेदितुम् एतद्यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः. श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इति अभिधीयते एतद्यो वेत्ति तुम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः. श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इति अभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः. दूसरा श्लोक दोहरा सकते हैं आप. श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इति अभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः. इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इति अभिधीयते एतद्यो वेति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः. श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इति अभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः. हरे कृष्ण. शब्दार्थ. अर्जुन उवाच. अर्जुन ने कहा. हरे कृष्ण. कृपया मंदिर में शांति बनाए रखें और प्रवचन का लाभ लें. अर्जुन उवाच. अर्जुन ने कहा प्रकृतिम प्रकृति पुरुषम भोक्ता च भी एव निश्चय ही क्षेत्रम क्षेत्र खेत क्षेत्रज्ञम खेत को जानने वाला एवा निश्चय ही च भी एतद यह सारा वेदितुम जानने के लिए इच्छामि इच्छुक हूँ ज्ञानम ज्ञान ज्ञेयम ज्ञान का लक्ष्य च भी केशव हे कृष्ण श्री भगवान उवाच भगवान ने कहा इदम यह शरीरम शरीर कौन्तेय हे कुंती पुत्र क्षेत्रम खेत इति इस प्रकार अभिधीयते कहलाता है एतद यह यह जो वेत्ति जानता है तम उसको प्राहु कहा जाता है क्षेत्रज्ञ खेत को जानने वाला इति इस प्रकार तत्विदः इसे जानने वालों के द्वारा अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। अनुवाद अर्जुन ने कहा हे कृष्ण मैं प्रकृति एवं पुरुष भोक्ता क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। श्री भगवान ने कहा हे कुंती पुत्र यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। क्योंकि तात्पर्य थोड़ा बड़ा है हम दोहराएंगे नहीं अनुवाद। सिद्धांत बलिया चित्ते न करह आलस। हालांकि हमको लगता होगा कि हम क्या ये एक एक शब्द का अर्थ समझ रहे हैं पर भगवत गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन से कि जो ये संवाद पढ़ता है मेरा और तुम्हारा बड़े ध्यान पूर्वक वो मेरी पूजा करता है किसके द्वारा बुद्धि के द्वारा। पूजा केवल आरती घुमाने से नहीं वो तो है ही है पर उससे भी श्रेष्ठ पूजा है हमारे बुद्धि द्वारा। तो भगवत गीता का ज्ञान हम जब ध्यान पूर्वक अध्ययन करेंगे समझने का प्रयास करेंगे तो हम भगवान की पूजा करेंगे बुद्धि द्वारा। इसीलिए हम बड़े गहराई से इसको समझने का प्रयास करते हैं प्रत्येक शब्द अनुवाद तात्पर्य। तो अब हम तात्पर्य पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अर्जुन प्रकृति पुरुष क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञान तथा ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक था। जब उसने इन सबों के विषय में पूछा तो कृष्ण ने कहा कि यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। यह शरीर बद्ध जीव के लिए कर्म क्षेत्र है। बद्ध जीव इस संसार में बंधा हुआ है और वह भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार प्रकृति पर प्रभुत्व दिखाने की क्षमता के अनुसार उसे कर्म क्षेत्र प्राप्त होता है। यह कर्म क्षेत्र शरीर है और यह शरीर क्या है? शरीर इंद्रियों से बना हुआ है। बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति चाहता है और इंद्रिय तृप्ति को भोगने की क्षमता के अनुसार ही उसे शरीर या कर्म क्षेत्र प्रदान किया जाता है। इसलिए बद्ध जीव के लिए यह शरीर क्षेत्र अथवा कर्म क्षेत्र कहलाता है। अब जो व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है। क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ अथवा शरीर और शरीर के ज्ञाता देही का अंतर समझ पाना कठिन नहीं है। कोई भी व्यक्ति यह सोच सकता है कि बाल्यकाल से वृद्धावस्था तक उसमें अनेक परिवर्तन होते रहते हैं, फिर भी वह व्यक्ति वही रहता है। इस प्रकार कर्म क्षेत्र के ज्ञाता तथा वास्तविक कर्म क्षेत्र में अंतर है। एक बद्ध जीव यह जान सकता है कि वह अपने शरीर से भिन्न है। प्रारंभ में ही बताया गया है कि देहिनो अस्मिन, जीव शरीर के भीतर है और यह शरीर बालक से किशोर, किशोर से तरुण तथा तरुण से वृद्ध के रूप में बदलता जाता है। और शरीरधारी जानता है कि शरीर परिवर्तित हो रहा है। स्वामी स्पष्टतः क्षेत्रज्ञ है। कभी कभी हम सोचते हैं, मैं सुखी हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं कुत्ता हूँ, मैं बिल्ली हूँ। ये ज्ञाता की शारीरिक उपाधियाँ हैं, लेकिन ज्ञाता शरीर से भिन्न होता है। भले ही हम तरह तरह की वस्तुएं प्रयोग में लाएं, जैसे कपड़े इत्यादि, लेकिन हम जानते हैं कि हम इन वस्तुओं से भिन्न है। इसी प्रकार थोड़ा विचार करने पर हम यह भी जानते हैं कि हम शरीर से भिन्न हैं। मैं, तुम या अन्य कोई जिसने शरीर धारण कर रखा है क्षेत्रज्ञ कहलाता है, अर्थात वह कर्म क्षेत्र का ज्ञाता है। और यह शरीर क्षेत्र है, साक्षात कर्म क्षेत्र है। भगवत गीता के प्रथम 6 अध्यायों में शरीर के ज्ञाता जीव तथा जिस स्थिति में वह भगवान को समझ सकता है उसका वर्णन हुआ है। बीच के 6 अध्यायों में भगवान तथा भगवान के साथ जीवात्मा के संबंध एवं भक्ति के प्रसंग में परमात्मा का वर्णन है। इन अध्यायों में भगवान की श्रेष्ठता तथा जीव की अधीन अवस्था की निश्चित रूप से परिभाषा की गई है। जीवात्माएं सभी प्रकार से अधीन हैं और अपनी विस्मृति के कारण वे कष्ट उठा रही हैं। जब पुण्य कर्मों द्वारा उन्हें प्रकाश मिलता है तो वे विभिन्न परिस्थितियों में यथा आर्त, धनहीन, जिज्ञासु तथा ज्ञान पिपासु के रूप में भगवान के पास पहुंचती है। इसका भी वर्णन हुआ है। अब 13वें अध्याय से आगे इसकी व्याख्या हुई है कि किस प्रकार जीवात्मा प्रकृति के संपर्क में आता है और किस प्रकार कर्म, ज्ञान तथा भक्ति के विभिन्न साधनों के द्वारा परमेश्वर उसका उद्धार करते हैं। यद्यपि जीवात्मा भौतिक शरीर से सर्वथा भिन्न है, लेकिन वह किस तरह उसे उससे संबंध हो लेकिन वह किस तरह उससे संबंध हो जाता है इसकी व्याख्या की गई है। हरे कृष्णा। बड़ा ही रोचक प्रसंग है आज का, तो हम चर्चा करेंगे। पहले मंगलाचरण कर ले। ओम अज्ञान्तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयमरूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। सो आप सभी का स्वागत है। भगवत गीता के इस 13वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण एक नए सेक्शन की शुरुआत करने वाले हैं। भगवत गीता में मुख्यतः 3 सेक्शन है, खंड भाग है, 6-6 अध्यायों में ये विभाजित है। तो पहले के 6 अध्याय उसे कहते हैं कर्म योग, बीच के 6 अध्याय हैं उसे कहते हैं भक्ति योग, और आखिरी के 6 अध्याय हैं उसे कहते हैं ज्ञान योग। हालांकि भगवत गीता में एकमात्र विषय वस्तु है भक्ति योग, जो कि वास्तव में पहले और आखिरी में भी भगवान उसी की व्याख्या करते हैं अलग तरीके से, कर्म के जरिए पहले 6 अध्याय में और ज्ञान के जरिए आखिरी के 6 अध्याय में। कैसे हम कर्म को भक्ति में लगा सकते हैं उसकी व्याख्या पहले 6 अध्याय में करते हैं, और कैसे हम ज्ञान से हमारी भक्ति बढ़ा सकते हैं, भक्ति में सुदृढ़ रह सकते हैं, उसकी व्याख्या अंतिम के 6 अध्याय में करते हैं। और बीच के 6 अध्याय वो एकदम सम एंड सब्सटेंस, वो भगवत गीता का सबसे मुख्य अंग है, प्योर भक्ति उसमें भगवान व्याख्या करते हैं। तो इस 13वें अध्याय में भगवान हमको बड़े ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर के बारे में बताने वाले हैं, बहुत ही मुख्य विषय वस्तु के बारे में बताने वाले हैं। इस अध्याय का शीर्षक क्या है? प्रकृति, पुरुष और चेतना। तो हम इस जगत में जी रहे हैं, इस जगत में हम ये चीज देखते हैं 2 प्रकार के, एक जीवित व्यक्ति और एक मृत व्यक्ति। जीवन देखते हैं और पदार्थ देखते हैं, है ना? तो ये क्या डिफरेंस है दोनों में, क्या भिन्नता है, और इससे हम क्या सीख ले जीवन में, ये सारी चर्चा इस अध्याय में की गई है। तो अर्जुन बड़ा ही रोचक प्रश्न पूछते हैं, और देखिए प्रश्न पूछने की शैली इतनी उत्कृष्ट है, एक सेंटेंस में, एक वाक्य में 6 प्रश्न पूछ लिए अर्जुन ने, इतनी दक्षता है। तो क्या पूछते हैं? प्रकृतिम पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञम एव च एतद् वेदितुम इच्छामि ज्ञानम ज्ञेयम च केशव। बोलते हैं 6 प्रश्न पूछ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि प्रकृति क्या है, व्हाट इज दिस नेचर। हम ये जो पर्यावरण में जी रहे हैं, ये जो नेचर है, प्रकृति कहते हैं हम, ये क्या है? प्रकृतिम पुरुषम, पुरुष जो एंजॉयर, जो भोक्ता है, इस प्रकृति का भोक्ता कौन है वास्तव में? क्षेत्र, क्षेत्र मतलब फील्ड ऑफ एक्टिविटीज। हम जब कोई कार्य करते हैं हमारा एक क्षेत्र होता है। तो पूछ रहे हैं अर्जुन क्षेत्र क्या है? क्षेत्रज्ञम, ये क्षेत्र को जानने वाला कौन है? क्षेत्रज्ञ मतलब जो क्षेत्र को जानता है। श्री राधा रास बिहारी जी की जय, श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री गौर निताई की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। दर्शन कुछ समय के लिए बंद हुए हैं, 8:30 पुनः दर्शन खोलेंगे, तब तक आप प्रवचन का लाभ लीजिए, शांति बनाए रखें। फिर पूछते हैं कि ज्ञान क्या है, व्हाट इज नॉलेज, और ज्ञेय, ये ज्ञान को जानने वाला व्यक्ति कौन है, सॉरी, ये ज्ञान से किसको जानना जाता है, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, किसको जानना चाहिए, ज्ञान का वास्तविक लक्ष्य क्या है, ये पूछ रहे हैं। ज्ञान क्या है, वास्तव ज्ञान क्या है, और ज्ञान का लक्ष्य क्या है, पूछ रहे हैं अर्जुन। तो 6 प्रश्न पूछ रहे हैं, प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ज्ञेय, ये कौन है, क्या है, और भगवान उसका एकदम सटीक उत्तर देते हैं। भगवद गीता में हमको एकदम सटीक उत्तर मिलता है, यहां वहां भटकाया नहीं जाता। अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं और डायरेक्ट आंसर मिल रहा है, यह है भगवद गीता की महानता। हमको कोई कंफ्यूजन नहीं होता कि क्या है सत्य, सत्य डायरेक्ट सुनो भगवान से, है ना। अगर हम 10 व्यक्तियों का मत लेंगे कि भाई आपके अनुसार ये क्या है, सत्य क्या है, आपके अनुसार सत्य क्या है, तो किस किस का सुनेंगे, हर व्यक्ति अपना मत रखता है। तो हमारे पास सबसे बेस्ट ज्ञान अवेलेबल है भगवान द्वारा डायरेक्ट। तो भगवान जो कह रहे हैं वो अगर हम स्वीकार करेंगे, वो अगर पालन करेंगे, तो बेस्ट रिजल्ट पाएंगे, है ना। तो भगवान कह रहे हैं यहाँ पे, पहले 2 प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। पहले 2 प्रश्न कौन से थे, प्रकृति कौन है, प्रकृति क्या है, सॉरी, इस श्लोक में भगवान बोलते हैं कि क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है। तो बोलते हैं, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते, ये जो शरीर है हमारा, ये क्षेत्र है, फील्ड ऑफ एक्टिविटीज, इसमें रह के हम कार्य करते हैं, सभी प्रकार के हम जो भी कार्य करते हैं जीवन में इस शरीर के थ्रू करते हैं, तो ये क्षेत्र कहलाता है। और एतद्यो वेत्ति तम प्राहु, ये जो जानता है, इस शरीर को जो जानता है, उसे एक क्षेत्रज्ञ कहते हैं। शरीर ज्ञ मतलब जानने वाला, ज्ञान रखने वाला, क्षेत्रज्ञ कौन है, जो शरीर के बारे में ज्ञान रखता है, जो शरीर के बारे में जानता है। प्रभुपाद जी इसका बड़ा सुंदर व्याख्या किए हैं तात्पर्य में, यही महानता है आचार्यों द्वारा जो टीका है, उससे हमको जो सब्जेक्ट मैटर है, जो विषय वस्तु है, वो एकदम खुल के सामने आ जाती है। अगर हमको हमसे अगर पढ़ना हो ये श्लोक, तो हम क्या करेंगे, इस पे चर्चा करेंगे, हाँ भाई ये शरीर क्षेत्र है और इसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ है, बस। पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में इस पूरे विषय वस्तु को एकदम उजागर कर दिए हैं, इतने महत्वपूर्ण पॉइंट्स, विषय वस्तु प्रभुपाद जी रखे हैं इस तात्पर्य में, जिसको हमारे लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, अनिवार्य है। तो ये शरीर क्षेत्र है, इससे भगवान शुरुआत करते हैं। तो जब हम ये सुनते हैं शरीर के बारे में, अगर हम श्रील प्रभुपाद जी एक बार MIT में गए थे, MIT जानते हैं, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, थोड़ा सा आवाज तेज हो रहा है, थोड़ा शांति बनाए रखें कृपया। तो MIT विश्व का सबसे टॉप का इंजीनियरिंग कॉलेज कह सकते हैं, टेक्निकल स्कूल, वो वहां पे दिग्गज, विश्व के सभी जो दिग्गज हैं टेक्निकल फील्ड में वहां पे हैं। तो वहां पे प्रभुपाद जी गए प्रवचन देने, हमारे प्रभुपाद जी, और वहां पे सब बड़े बड़े प्रोफेसर बैठे थे और स्टूडेंट्स और पूरा कॉलेज बैठा था उधर। श्रील प्रभुपाद जी ओपनिंग अपने प्रवचन के शुरुआत में ही बॉम्ब फोड़ दिए उधर, बॉम्ब मतलब प्रश्न पूछे, पूछे कि आपका ये जो विश्वविख्यात यूनिवर्सिटी है MIT, इसमें है कोई ऐसा डिपार्टमेंट? आपके यहाँ बहुत सारे डिपार्टमेंट है, केमिकल डिपार्टमेंट, मैकेनिकल डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, कंप्यूटर डिपार्टमेंट, है ना, कई विज्ञान के सब्जेक्ट्स पे आप चर्चा करते हैं। है कोई ऐसा डिपार्टमेंट आपके स्कूल में, आपके यूनिवर्सिटी में, जिसमें ये बताया जाए कि एक जीवित व्यक्ति और एक मृत व्यक्ति में क्या भेद है? है कोई डिपार्टमेंट जिसमें ये खोज की गई कि मृत व्यक्ति में कौन सा केमिकल मिसिंग है? अगर लोग कहते हैं कि हम ये शरीर है, तो जब शरीर मरता है तो कोई केमिकल, लोग कहते ना ये जीवन केमिकल से आ गया, रसायन का मिश्रण हुआ कुछ और फिर जीवन उत्पन्न हो गया। तो अगर ऐसा है तो कोई मरता है तो पता कर लो भाई कौन सा केमिकल मिसिंग है, और फिर इंजेक्शन लगा दो उसको, क्यों जीवित नहीं खड़ा हो जाता व्यक्ति? प्रभुपाद जी पूछे, है कोई ऐसा डिपार्टमेंट जो ऐसी खोज कर पाए कि मृत व्यक्ति में क्या चीज कमी है जिसको डालने से वो जीवित हो जाएगा? तो सारे जो प्रोफेसर थे सब हक्के बक्के रह गए। वो लोग बोले, भाई ऐसा तो कुछ है नहीं हमारे इधर के, जीवन क्या है, मरण क्या है, इसके बारे में तो कभी हमने चर्चा की नहीं और हमने इस पे हमारा ध्यान दिया नहीं। फिर प्रभुपाद जी समझाने लगे आत्मा के बारे में, शरीर के बारे में। तो ये जो विषय वस्तु है काफी साइंटिफिक है, काफी वैज्ञानिक है, और भगवान इसका प्रस्तुति बहुत ही रोचक ढंग से करते हैं गीता में। कोई भी व्यक्ति जो थोड़ा भी विचार रखता है, विचारशील व्यक्ति है, उसको ये समझेगा कि भाई जो बात कह रहे हैं भगवान, इट मेक्स सेंस, ये मतलब बनता है इसका, ये समझ में आता है, सत्य है। तो भगवान कहते हैं, कैसे हम ये शरीर नहीं है? हम जो मान बैठते हैं कि भाई मैं तो ये शरीर हूं, भगवान कहते हैं हमको गीता में कि कैसे हम शरीर नहीं है। जो तो दिव्य ज्ञान है ना, वो बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमको जो ज्ञान है वो जरूरी नहीं कि प्रत्यक्ष वो दिखे कि भाई ऐसा ही होगा। उदाहरण के तौर पे रेगिस्तान में वो उसको बोलते हैं मिराज, मिराज मतलब पानी दिखता है ना आगे, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मृग मरीचिका कुछ तो ऐसा बोलते हैं। तो आप रोड पे भी जाएंगे, गर्म रोड पे जाएंगे, गर्मी का दिन होगा तो आप देखेंगे कि आगे रोड पानी वाला दिखता है, थोड़ा पानी दिखता है आगे, है ना, पर जैसे ही नजदीक जाएंगे तो कुछ नहीं है, उधर सूखा रोड है और वो आगे सरक जाता है वो दृश्य। तो रेगिस्तान में ऐसा होता है, जो पशु है वो उसको दिखता है कि पानी है उधर, सामने पानी है, और वो उस ओर दौड़ पड़ता है, पर जैसे ही वहां पहुंचता है वो देखता है कि पानी सरक गया, है ना, जिसे वो पानी समझ रहा था वो तो रेत है। तो भागते रहता है, भागते रहता है, भागते रहता है, पर उसको समझ नहीं आता कि ये प्राकृतिक फेनोमेना है, यू नो, ये सत्य नहीं है। दिख रहा है, दिख रहा है उसको कि है पानी, आंख बोल रही है कि है उधर पानी, भाई जा उधर, पर होता नहीं पानी। उस अवस्था में अगर कोई व्यक्ति जिसको हायर नॉलेज है, जिसको ज्ञान है कि भाई ये सत्य नहीं है, दिखता है पानी, आंख कह रही है पानी है उधर, पर अगर उसको ज्ञान है कि भाई ये रेगिस्तान में पानी नहीं होता, रेगिस्तान में सिर्फ रेत होती है, पानी होता है कहां पे? समुद्र में, हाँ, पर रेगिस्तान में पानी नहीं होता, तो उसको मालूम है, तो वो अपना एनर्जी वेस्ट नहीं करता इधर उधर दौड़ के, वो अपना एनर्जी बचाता है बाहर निकलने में, रेगिस्तान से बाहर निकलने में। तो यह है दिव्य ज्ञान का प्रभाव। हमको जब ज्ञान होता है तब जरूरी नहीं है कि हमको वो वस्तु यथारूप दिखे, कि अरे जैसे अभी वो पशु को दिख रहा है कि पानी तो है, पर उसको अगर कहा जाए, अगर कोई व्यक्ति है जिसको ऐसा पानी दिख रहा है उसको कहा जाए कि भाई ऐसे दौड़ना मत, ये पानी नहीं है, अब बाहर निकलो रेगिस्तान के, फिर उधर आपको पानी मिलेगा। तो अगर उसको ऐसे कहा जाए कोई व्यक्ति को, तो वो बोलेगा अरे तुम क्या मेरे को मूर्ख बना रहे हो, मुझे दिख रहा है पानी है। तो अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति है जो दिव्य ज्ञान रखता है, उसको दिव्य ज्ञान दिया जाता है और वो उसे अर्जित करता है, उसे ध्यानपूर्वक सुनता है और उसका पालन करता है, तो क्या होता है, वो बच जाता है, बच जाता है पतन से। कई उदाहरण है, हमने एक छोटा उदाहरण समझा। तो जो दिव्य ज्ञान है वो हमको समझना बड़ा अनिवार्य है। हालांकि एट प्रेजेंट हमको लगे कि अरे ऐसे कैसे है, हम अभी देखते हैं कि हम तो शरीर हैं, हाँ हम इतना आइडेंटिफाई कर रहे हैं हमारे शरीर से कि मैं तो शरीर ही हूँ। कोई हमको पूछेगा कि भाई आप कौन हो, तो हम थोड़ी बोलेंगे भाई मैं तो आत्मा हूँ, ऐसा थोड़ा नहीं, ऐसा तो नहीं बोलते। हम अपना पूरा देंगे, आधार कार्ड भी दे देंगे उसको, भाई देख मैं ये हूँ, है ना। तो ऑफकोर्स प्रैक्टिकल डीलिंग में ऐसा ही करना पड़ता है, पर भगवत गीता हमको हायर नॉलेज देती है, दिव्य ज्ञान देती है कि भाई ऐसा नहीं है, जो दिख रहा है वो सत्य नहीं है। हमको लग रहा है कि हम शरीर है पर ये सत्य नहीं है। थोड़ा बोलते हैं इसको चमकाने वाला कंसेप्ट है, पर सत्य है। और भगवान इसका बहुत ही रोचक ढंग से प्रस्तुति करते हैं, समझाते हैं गीता के दूसरे अध्याय में कैसे हम शरीर नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो बुद्धिमान है वो इसको समझ सकता है। भगवान कहते हैं गीता के दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में, देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यति। जो धीर व्यक्ति है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वो जानता है कि जो ये शरीर है, यू नो हम जब छोटे थे, अभी ये बच्चे खेल रहे हैं, बड़ा आवाज भी कर रहे हैं, तो इनका छोटा शरीर है, हमारा छोटा शरीर था, फिर हम बड़े हुए, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, फिफ्थ, टेंथ, शरीर बढ़ते गया, अभी हमारी युवा अवस्था है, फिर बूढ़े हो जाएंगे। तो शरीर को अगर हम ध्यान से देखें तो पहले तो इतना था, फिर बढ़ गया, बढ़ते गया, फिर कम होते जाएगा और फिर नष्ट हो जाएगा। तो जीवन में, पूरे जीवन काल में शरीर तो चेंज हो रहा है ना, शरीर तो चेंज हो गया ना, अभी छोटा शरीर कहां गया, वो चेंज हो गया। पर व्यक्ति तो हम वही है ना, व्यक्ति तो मैं वही हूं ना, जो मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में था वही मैं टेंथ स्टैंडर्ड में था, और अभी मैं वही हूं और आगे भी वही रहूंगा। अभी मेरा कोई हाथ काट दे तो फिजिकली, शारीरिक तौर पे तो मैं कम हो जाऊंगा, पर व्यक्ति तो मैं वही रहूंगा ना। मेरे में कुछ ऐसी कमी आएगी क्या कि मैं 10% कम हो गया, नहीं ना। मेरे को कोई आंख दे देगा, समझो मैं अंधा हो गया, कोई मेरे को आंख दे देगा तो मैं बदल जाऊंगा क्या, मेरा व्यक्तित्व बदल जाएगा, व्यक्ति तो मैं सेम रहूंगा, है कि नहीं। तो ये इससे क्या पता चलता है कि शरीर चेंज हो रहा है जीवन में, है ना। शरीर तो छोटे से बड़ा हुआ और फिर नष्ट हो जाएगा, शरीर चेंज हो रहा है पर व्यक्ति सेम है। तो बुद्धिमान व्यक्ति तुरंत समझ जाता है कि भाई मैं शरीर नहीं हूं, इसका मतलब शरीर तो चेंज हो रहा है, बदल रहा है, पर मैं तो सेम हूं, तो मतलब मैं शरीर से भिन्न हूं। इलिनॉइस यूनिवर्सिटी अमेरिका में एक विख्यात मेडिकल स्कूल है, मेडिकल कॉलेज है, वहां के एक प्रोफेसर डॉक्टर हैरी मॉन्सन आप गूगल कर सकते हैं. सो उन्होंने रिसर्च किया है कि इस शरीर में कौन कौन से पदार्थ हैं ना. उन्होंने पूरा विभाजन किया है कि भाई कैल्शियम, फॉस्फेट, सल्फर, आयरन, जो भी वस्तु हम देखते हैं केमिस्ट्री में पढ़े हैं, तो उन्होंने पूरा कंपोजिशन निकाला है कि भाई पांच शरीर में एक 60 पाउंड के व्यक्ति में कितना अमाउंट कैल्शियम है, कितना आयरन है, कितना सल्फर है. समझो 5 ग्राम सल्फर, 10 ग्राम आयरन, 25 ग्राम आयोडीन, ऐसा उदाहरण के तौर पे बताना. तो ऐसा करके उन्होंने पूरा लिस्ट बनाया है और फिर वो सारा जो केमिकल, उतनी मात्रा में जो केमिकल है, उसका मार्केट वैल्यू उन्होंने निकाला. मार्केट वैल्यू, हाँ, आपको मालूम है कितना मार्केट वैल्यू आया उसका? आप जो ये शरीर को, हम जो ये शरीर को बहुत एकदम दिलो जान से उसकी पूजा करते हैं, उसकी देख रेख करते हैं, उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है साइंटिफिक रिसर्च से? हाँ, तो डॉक्टर हैरी मॉन्सन ने रिसर्च करके बताया कि भाई इसकी मार्केट वैल्यू इंडियन रुपीज में 110 रुपए है. है ना? तो आप मानेंगे इस बात को भाई, शरीर पे एक खरोच आती है तो उस पे यू नो हजारों का मेडिसिन लग जाता है. आप बोलते ये 110 का है. अभी कोई आप कार में बैठे हैं, मर्सिडीज बेंज, BMW, और भी जो भी, तो रोल्स रॉयस, तो आप बैठे हैं और कार का एक्सीडेंट हो जाएगा. चलो आप नहीं बैठे, आपका कोई मित्र बैठा है, कार का एक्सीडेंट हो जाएगा तो आप क्या करेंगे? अच्छा, मर्सिडीज बेंज की कीमत क्या होगी लगभग? हाँ, 50 लाख, जो भी है. तो 50 लाख की कार है, उसमें आपका मित्र बैठा है, एक्सीडेंट में घायल हो गया, तो आप क्या करेंगे? किसको पहले देखेंगे? किसको पहले देखेंगे? हाँ, आपका मित्र घायल हो गया है, खून बह रहा है, सर फट गया है उसका, और कार भी पूरी तरह नष्ट हो गई है, तो आप क्या करेंगे उस अवस्था में? हाँ, वो अपने मित्र को बाहर निकाल के हॉस्पिटल लेके जाएंगे पहले, है ना? कार को देखेंगे पहले? नहीं ना. पर अगर तुलना करें तो क्या है डिफरेंस? कॉस्ट प्राइस कितना है? कार का है 50 लाख और आपके मित्र का शरीर है वो है 110 रुपये. पर हम जानते हैं ना कि जीवन का मूल्य क्या है. हम पहले जीवन को बचाएंगे. जब कोई दुर्घटना होती है कि प्लेन क्रैश हो गया, तो क्या न्यूज आती है? 2 टन एल्यूमिनियम बर्बाद हो गया, ऐसा न्यूज आता है? नहीं ना. तो इतने लोग मर गए, ऐसा 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 जीव, इतने लोग मारे गए, ऐसे ऐसा न्यूज आता है? तो मतलब जीवन अमूल्य है, पर शरीर का तो फैक्ट तो यही है कि शरीर का तो प्राइस उतना ही है 110. पर हम जानते हैं कि जीवन अमूल्य है. जीवन बचाने के लिए हम क्या कुछ नहीं करते. तो ये कैसे समझे? तो भगवान इसका रहस्य खोलते हैं गीता में कि भाई आप ये शरीर नहीं हो, आप शरीर से बहुत वैल्यूएबल हो. गुड न्यूज है ना. शरीर तो 110 रुपए का है, पर आप भगवान के शाश्वत पार्षद हैं, भगवान के अंश हैं, जीवात्मा हैं, भगवान से संबंधित हैं. तो ये हमारा वास्तविक पहचान है. तो कैसे पता चलेगा हमको? ये दिव्य ज्ञान कौन देगा हमको? गीता में. गीता में हमको भगवान ये दिव्य ज्ञान देते हैं, जिससे कि हमको हायर नॉलेज मिलता है कि अरे भाई ऐसा है, हमारी वास्तविक अवस्था पहचान ये है कि हम जीवात्मा हैं. तो ये जो ज्ञान है, इसको हम रियलाइज कैसे करेंगे? पता तो चल गया, अभी आज सुन लिया हमने कि भाई हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। अब इसके बारे में और जानकारी कैसे प्राप्त होगी? गीता में। गीता पढ़ेंगे तो हम ये दिव्य ज्ञान को प्राप्त करेंगे, और इससे क्या होगा? श्री राधा रास बिहारी जी की जय, श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री गौर निताय की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। तो इससे क्या होगा, ये दिव्य ज्ञान प्राप्त करने से क्या होगा? हम जीवन में जो विषम परिस्थितियां हैं, डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस हैं, उसमें क्या चूज करना है, ये जानकारी मिलेगी। हमारा जीवन पूरा चॉइसेस पे निर्भर करता है। हम किस दिशा में जाएंगे, हमारा क्या होगा जीवन में, ये चॉइस पे निर्भर करता है। तो वो चॉइस किस बेस पे चूज करना है, वो हमको बताएगी भगवद गीता। सो और बड़े बड़े खुशी की बात ये है कि अभी ये इस महीने में, बल्कि कल ही, कल और परसों गीता जयंती है। गीता जयंती, भगवान स्वयं गीता का उपदेश किए अर्जुन को मोक्षदा एकादशी के दिन। सो ये बार दो तिथि में आ रही है एकादशी, तो कल और परसों गीता जयंती है। तो आप लोग से विनती है कि आप लोग स्वयं गीता पढ़े ध्यानपूर्वक, और अपने मित्रों को, सगे संबंधियों को भेंट दें, और आप देखेंगे आपका जीवन, खुद का जीवन आपका तो सुधर ही जाएगा, खुशहाल हो जाएगा, और आपके सगे संबंधी जिसको आप वास्तव में खुश देखना चाहते हैं वो खुश हो पाएंगे, है ना। और इस भगवद गीता को डिस्काउंट रेट पे उपलब्ध किया जा रहा है इस पूरे मंथ में, इस पूरे महीने में। तो आप इसका लाभ लें, आप गिफ्ट दें सभी को, है ना। यहाँ पे तुला दान की भी फैसिलिटी है, आप तुला दान के काउंटर पे जाके उसका महत्व जान सकते हैं, भगवत गीता दान दे सकते हैं। और भगवत गीता को समझने के लिए एक और चीज आवश्यक है, भगवान का दिव्य नाम लेना। भगवान का दिव्य नाम हमारे चित्त को शुद्ध करता है, और इसको जब हम लेते हैं ध्यान पूर्वक, तो हमको भगवान दिव्य बुद्धि प्रदान करते हैं इसको समझने के लिए। तो ये मंत्र जो हम कहते हैं, आपने जो सुना मंदिर में, इसे कहते हैं हरे कृष्णा महामंत्र। इसका नियमित रूप से आप जप कीजिए, और आप देखेंगे कि आपका जीवन कैसे सुधरता है, प्रफुल्लित हो जाता है। तो एक बार जोर से हाथ उठा के भगवान के लिए महामंत्र गाएंगे मेरे पीछे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। भगवतवाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरे रे गौर।
वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरु वैष्णव।